नमस्कार भारत, आज है 3 दिसंबर दिन रविवार। सभी सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का सुप्रभात। गुजरात में कैसा है जनता का मूड, सुनेंगे वहां का दौरा कर चुकी वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी को।
तो जो गोलीकांड हुआ था और 14 बच्चे मरे थे, लड़के मरे थे, उसका काफी पाटीदार कम्युनिटी में असर है। तो वो बात कर रहे थे मेहसाणा में, जो शब्दावली यूज कर रहे थे वो था कि इनको बहुत घमंड हो गया है।
उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में भाजपा की जीत के बाद मायावती ने फिर उठाए ईवीएम पर सवाल, और न्यूज मेकर्स में आज मुलाकात मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर से।
डेफिनेटली मैं आमिर खान की मूवी में वर्क करना चाहूंगी, बिकॉज आई थिंक ही हैज रियली चैलेंजिंग रोल्स दैट ही गिव्स टू।
लेंगे पाकिस्तान का हाल और होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि उन्होंने माइकल फ्लिन को एफबीआई से झूठ बोलने की वजह से बर्खास्त किया था। ट्रंप के इस ट्वीट के बाद उन पर न्याय को बाधित करने के आरोप भी लग सकते हैं। कुछ कानून विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के बयान से संकेत मिल रहा है कि उन्हें पता था कि उनके पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एफबीआई को गुमराह किया है, और ये जानते हुए भी उन्होंने एफबीआई निदेशक जेम्स कॉमी से फ्लिन के खिलाफ चल रही जांच को रद्द करने के लिए कहा। ट्रंप ने जोर दिया है कि उनके पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने जो किया वो कानूनन था। रूस के अमरीकी चुनावों में दखल देने की जाँच चल रही है। फ्लिन ने एफबीआई से झूठ बोलने की बात स्वीकार कर ली है। वहीं अमेरिका के प्रमुख मीडिया नेटवर्क एबीसी ने फ्लिन प्रकरण की गलत रिपोर्टिंग करने पर अपने मुख्य खोजी पत्रकार ब्रायन रॉस को 1 महीने के लिए बर्खास्त कर दिया है। गलत रिपोर्ट की वजह से कुछ समय के लिए अमेरिकी डॉलर और स्टॉक बाजार गिर गए थे। एबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि फ्लिन एफबीआई के सामने ये कह सकते हैं कि रूसी अधिकारियों से बात करने के लिए उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने ही निर्देशित किया था। हालांकि बाद में एबीसी ने अपनी रिपोर्ट में सुधार करते हुए कहा कि तथ्यों की पूरी तरह से जांच नहीं की गई थी। अमेरिका के प्रवासी विरोधी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी एएफडी ने कट्टरपंथी विचारधारा वाले 2 नेताओं को पार्टी के संयुक्त शीर्ष नेताओं के तौर पर चुन लिया है। जर्मनी की राष्ट्रीय संसद में सीटें जीतने के बाद पहली बार हुए पार्टी के महासम्मेलन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और दंगारोधी पुलिस के बीच हैनोवर शहर में झड़पें भी हुई हैं। बीबीसी के बर्लिन संवाददाता के मुताबिक अलेक्जेंडर गोलैंड और यॉर्क मोयटेन का नेता चुना जाना इस बात का संकेत है कि पार्टी घोर मुस्लिम विरोध और राष्ट्रवाद की दिशा में चलेगी। इन नेताओं के चुनाव को पार्टी के उन मध्यम मार्गी नेताओं के लिए भी झटका माना जा रहा है जिन्हें एक दिन पार्टी का सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद थी। नेता चुने जाने के बाद यॉर्क मोयटेन ने कहा, हमने बहुत ईमानदार नतीजे हासिल किए हैं। पार्टी की 3/4 लोग मेरे साथ हैं और बाकी 1/4 मेरे समर्थन में नहीं हैं। कम से कम उन्होंने मेरे लिए मतदान नहीं किया है। मुझे लगता है कि ये ठीक ही है। मैं 100% मत नहीं चाहता था। वह एक ईमानदार जनादेश नहीं होता। यमन की राजधानी सना में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों और उनके पूर्व सहयोगी सैन्य बलों के बीच 4 दिनों से लड़ाई जारी है। पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के समर्थक इन बलों और हूती विद्रोहियों के बीच लड़ाई में कई दर्जन लोग मारे जा चुके हैं। रेड क्रॉस के मुताबिक इन झड़पों में सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। दोनों पक्ष मंत्रालयों और एयरपोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण इमारतों पर नियंत्रण को लेकर लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक दोनों बल सऊदी अरब के नेतृत्व के गठबंधन के खिलाफ मिलकर लड़ रहे थे। इसी बीच सऊदी अरब ने अली अब्दुल्लाह सालेह की ओर से आए बातचीत के प्रस्ताव का स्वागत किया है। वहीं अली अब्दुल्लाह सालेह के प्रवक्ता हिशाम शरफ अब्दुल्लाह ने कहा है कि वो बातचीत के लिए गंभीर हैं। उन्होंने कहा, हाँ वो गंभीर हैं, और वो जब नई शुरुआत की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ऐसा चाहते हैं। वो नेक नियति दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक तरह से विश्वास बहाल करने का कदम है। हम उन्हें बता रहे हैं कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं और हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। गठबंधन से बात करने की भी ज़रूरत है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। श्रोताओं, आज कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात से, जहां 9 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होना है। इस बीच बहस तेज हो रही है कि जनता बीते 2 दशकों की सत्ताधारी भाजपा को चुनेंगे या इस बार बदलाव का रुख करेंगे। गुजरात में एक और सत्तारूढ़ बीजेपी से कथित तौर पर नाराज दलितों और पाटीदारों की मांग को लेकर उभरे नए नेताओं को मिल रहा जनसमर्थन है, तो दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी एक नए आक्रामक अवतार में सामने आए हैं। बीते दिनों राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने गुजरात में अहमदाबाद, मेहसाणा, सौराष्ट्र, राजकोट, सुरेंद्रनगर, सूरत और भरूच में वासवा के आदिवासी बहुल इलाकों समेत कई और जगहों का दौरा किया और चुनावी मुद्दों और जनता के रुझान का जायजा लिया। बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने उनसे बात की और पूछा कि उन्होंने क्या कुछ देखा, सुना और महसूस किया।
मुझे गांव में स्थिति चेंज की लगी, डिजायर फॉर चेंज। मेहसाणा में पाटीदार नाराज था और अपना गुस्सा भी जाहिर किया। वहाँ पाटीदारों ने जो कहा वो था कि रिजर्वेशन उनके लिए इतना इश्यू नहीं, और कई लोग पाटीदारों में कहते हमें मालूम है कांग्रेस भी नहीं करेगी, ये भी नहीं करेंगे, तो आप अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो क्यों दोगे थे, क्योंकि हमें कांग्रेस ने मारा तो नहीं। तो जो गोली कांड हुआ था और 14 बच्चे मरे थे, लड़के मरे थे, उसका काफी पाटीदार कम्युनिटी में असर है। तो वो बात कर रहे थे मेहसाणा में, जो शब्दावली यूज कर रहे थे वो था कि इनको बहुत घमंड हो गया है, इनको लगता है गुजरात इनको रूल करता है और इससे हमें एक ये मनमानी कर रहे हैं कि इनको एक फटका देना है ताकि लाइन पे आ जाए। तो ये कंट्री साइड में हर जगह आक्रोश नहीं था, कई जगह नाराजगी थी, जैसे कि ट्राइबल एरिया में भी नाराजगी थी, खेड़ा के गांव में भी नाराजगी थी। खेड़ा इज बाय द वे द मोस्ट प्रॉस्परस विलेज जीडीपी वाइज इन द होल कंट्री। तो विकास हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वहां जैसे नाराजगी हो गई, आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठी, सरपंच एक कमरे में बैठ के कह रहा है कि यहाँ तो बीजेपी की तरफ जा रहा है वोट, और दूसरे बिल्कुल बगल के कमरे में 24 आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो 24 गांवों से आए हैं, मंथली रिपोर्ट दे दे सुपरवाइजर को। जब मैं अंदर गई और क्वाइटली बात की प्राइवेटली, एवरी सिंगल वन ऑफ देम सेड वी वांट चेंज।
अच्छा, इस बार जैसे राहुल गांधी को जब हम देखते हैं तो उनका जो है एक, हम देखते हैं कि एक अलग ही व्यक्तित्व है, एक अलग ही राहुल गांधी हमको दिखते हैं। क्या राहुल गांधी को एज नेता देख पा रहे हैं गुजरात के लोग?
हाँ, इस बार राहुल को रबिश नहीं कर रहे थे लोग, और लोग कहते हैं कि वो सुनना चाहते थे। जैसे मैं पहुंची तो दैट ड्राइवर, मैंने पूछा सो राहुल के बारे में क्या लोग सोचते हैं, तो ठीक है ना, मुझे कहें कि आप नो गुड हो एज अ ड्राइवर, बिना आप ट्राई किए मुझे कि मैं ड्राइविंग सीट में बैठ के मुझे ट्राई किए बिना ही आपने मुझे रबिश कर दिया, तो कैसे हो सकता। आप पहले उनको ट्राई तो करना चाहिए ना। सो दे आर लुकिंग एट हिम विद न्यू आईज, एंड दैट इज रियली आई फील बिकॉज द मूड इन गुजरात हैज चेंज्ड।
जो यूपी में निकाय चुनाव में बीजेपी के अच्छे परफॉर्मेंस का, क्या गुजरात पे कोई असर पड़ सकता है?
देखो, एक लोकली ऐसा होता नहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इतना हम कम्युनिकेशन के रेवोल्यूशन में है, जो आज यूपी में हो रहा है गुजरात में सामने आता है ना, टीवी के थ्रू आएगा, सोशल मीडिया के थ्रू आएगा, हर तरीके से वहां भी पढ़ा जाएगा ना। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर तो हो ही जाता है ना, आप एक हफ्ता रह गया चुनाव के लिए, और जो फ्रेंच सिटर है वो सोच रहा होगा उसके लिए, मोदी भी तो फ्रेंच सिटर को अपील कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही अपील कर रहे हैं, मैं गुजरात का बेटा हूँ, एंड बीजेपी हैज नो अदर फैक्टर, नो अदर कार्ड बट मोदी। आज अब मोदी इलेक्शन में नहीं होंगे, बीजेपी वुड हैव लॉस्ट कंप्लीट।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। अब आपको सीधे गुजरात के अहमदाबाद ही ले चलते हैं, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। नितिन, आपने नीरजा चौधरी को सुना होगा, आप अभी तक जहां जहां गए हैं, जिन लोगों से मिले हैं, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जनता का कोई बहुत स्पष्ट मूड समझ में आ रहा हो?
देखिए, जनता की जो 2-3 बातें स्पष्ट है तौर पर समझ में आ रही है वो ये, जैसा नीरजा खुद भी कह रही थी कि ये इलेक्शन गुजरात में बीजेपी से ज्यादा मोदी का है, और ये इलेक्शन इस बात पे ज्यादा है कि जो बीजेपी ने पास्ट में किया है, यानी जो पुराने दिनों में जो भी गवर्नेंस रही है, जो भी विकास की बात रही है, जो भी सड़कों की बात रही है, बिजली पानी की बात रही है, उन्हीं मुद्दों को दोबारा लाकर नरेंद्र मोदी के एक तरह से एक पैकेज में जो है उसको वोटर्स तक दोबारा परोसा जा रहा है। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, ये नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी है। जहां तक मतदाताओं का सवाल है, तो मतदाता भी गुजरात को अभी मोदी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मोदी की जो रिजीम थी जो तीन बार की, उसके बियॉन्ड शहरों में कम से कम नहीं देख पा रहे हैं। नीरजा की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, गांवों में हम ज्यादा ग्रामीण इलाकों में नहीं जा पाए हैं, लेकिन अहमदाबाद से 150 किलोमीटर के आसपास जिन इलाकों में गए, वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा इस बात को लेकर अब डिस्कनेक्ट दिखने लगा है कि अब ये बीजेपी और ये बीजेपी का गुजरात है, मोदी का गुजरात नहीं रहा है, मोदी दिल्ली चले गए।
नितिन, अब चुनाव की तारीख करीब आ रही है, चुनाव प्रचार की क्या दौड़ भाग है, दोनों तरफ से कौन से बड़े नेता वहाँ प्रचार कर रहे हैं या करने वाले हैं?
जबरदस्त है, आज तो खुद प्रधानमंत्री गुजरात आने वाले हैं, और वो सुरेंद्रनगर जाएंगे, भरूच जाएंगे, सौराष्ट्र में राजकोट जाएंगे। राजकोट इसलिए बहुत अहम है कुलदीप, क्योंकि ये पाटीदार जो पूरा एक आंदोलन हुआ है वो वहां पर बहुत स्ट्रांग है। हार्दिक पटेल की तमाम रैलियों के बारे में खबरें आ रही हैं कि हजारों की भीड़ें वहां पर आ रही हैं, और इसीलिए शायद मोदी का एक और प्लान है कि वो जो स्वामी नारायण सेक्ट होता है, क्योंकि वो पाटीदार समाज की बहुत फॉलोइंग है, उसके भी एक दो फंक्शंस में जाने का उनका प्लान बताया जा रहा है। लेकिन उनके अलावा राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा से लेकर कल मेरी मुलाकात राज्यवर्धन राठौर से हुई, तो तमाम नेता मशीनरी एकदम से झोंक दी गई है गुजरात में इलेक्शन के लिए।
बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव, हमसे जुड़े थे सीधे गुजरात से। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां निकाय चुनावों के बाद एक बार फिर ईवीएम मशीनों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अभी तक इस पर बहुजन समाज पार्टी ही सरकार को कोस रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इसमें खुले तौर पर शामिल हो गई हैं। बसपा नेता मायावती ने तो खुली चुनौती दी है कि अगर अगले लोकसभा चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करा दिए जाएं तो भाजपा हार जाएगी। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
करीब 8 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लगभग एकतरफा जीत ने राजनीतिक दलों के अलावा राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया था, लेकिन परिणामों के तुरंत बाद बीएसपी नेता मायावती ने यह आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया कि बीजेपी की जीत ईवीएम मशीनों में टैम्परिंग या फिर उनकी हैकिंग की वजह से हुई है। दबे मन से सपा और कांग्रेस भी बीएसपी की हाँ में हाँ मिलाने लगी, लेकिन बीएसपी नेता मायावती की तरह नहीं। अब निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद मायावती ने फिर इस मुद्दे को उठाया है, और अब समाजवादी पार्टी इस मामले में बीएसपी से कहीं ज्यादा मुखर दिख रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर कहते हैं,
नगर निगम है जहां पे ईवीएम से वोटिंग हुई है, वहां पे रिजल्ट जरूर एक तरफा है, और मुझे लगता है कि इसमें शासन का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग और पूरी तरह की बेईमानी सामने अभी और आएगी।
दरअसल इन आरोपों को कुछ ऐसे तथ्यों से और बल मिल रहा है कि जिन नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में ईवीएम के जरिए मतदान कराए गए, बीजेपी ने वहां भी वैसी बड़ी जीत क्यों नहीं हासिल की जैसी कि नगर निगम के चुनाव में। नगर निगम में बीजेपी ने 16 में से 14 सीटें जीती, जबकि नगर पालिका चेयरमैन के 198 में से 70 और नगर पंचायत अध्यक्ष की 438 सीटों में से सिर्फ 100 सीट पर ही उसे कामयाबी मिल सकी है। विपक्ष का आरोप है कि निगम चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत ईवीएम मशीनों को मैनेज करने के कारण हुई। कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र मदान कहते हैं,
शासन ने प्रशासन को इस्तेमाल करके नीचे के स्तर पे एक सिपाही तक, एक लेखपाल तक को लगाकर इस चुनाव को प्रभावित करने का और जीतने का प्रयास किया है। बहुत सी जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें आई है, मतदाताओं ने देखा है कि उन्होंने वोट किसी को दिया, मशीन में बत्ती किसी की जल रही है, सत्ता पक्ष के चुनाव चिन्ह की बत्ती जल रही है, ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं।
वहीं बीएसपी नेता मायावती भी बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाती हैं, और उन्होंने बीजेपी को चुनौती दे डाली कि वो 2019 में लोकसभा का चुनाव ईवीएम मशीनों की बजाय बैलेट पेपर से कराए।
इस चुनाव में भी इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, नहीं तो हमारे मेयर और बनते और सीटें हमारी चुनकर आ जाती। इन्होंने धांधली की, काउंटिंग में इन्होंने गड़बड़ किया है। आज भारतीय जनता पार्टी को मैं चेतावनी देती हूँ, यदि वो ईमानदार हैं और वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ईवीएम को अलग कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाओ। सन 2019 में लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि यदि ये बैलेट पेपर से लोकसभा का आम चुनाव कराते हैं तो ये पावर में आने वाले नहीं।
बहरहाल ईवीएम मशीनों में पहले तो इस खामी की आशंका जताई गई कि ये मशीनें किसी भी उम्मीदवार के नाम के सामने की बटन दबाने पर बीजेपी को ही वोट देती हैं, जबकि अब ये भी कहा जा रहा है कि ईवीएम मशीनें न सिर्फ कमल के फूल पर वोट बरसाती हैं बल्कि गिनती में भी उसको ज्यादा तवज्जो देती हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। स्टूडियो में मेरे साथ प्रमुख अखबारों के साथ मौजूद हैं दिलनवाज पाशा। दिलनवाज, बताइए आज के अखबारों में क्या क्या है।
जी, आज के अखबार बता रहे हैं कि गुजरात में चुनाव अब धर्म युद्ध बन गया है और धर्म की जो बात है वो ज्यादा हो रही है। विकास, सड़क, रोजगार के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। जनसत्ता लिखता है गुजरात में जारी धर्म युद्ध, तो वहीं कई अखबारों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस बयान को प्रमुखता से पहले पन्ने पर छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग क्लोन क्यों चुनेंगे। उनका कहना है कि बीजेपी असली हिंदुत्व का समर्थन करती है और राहुल गांधी जो आजकल मंदिरों में जा रहे हैं वो
बीजेपी, उन्होंने नकली हिंदुत्व बताया
जी, वो उसको क्लोन कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का साक्षात्कार कई अखबारों में पहले पन्ने पर है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी दिल्ली के मंदिरों में क्यों नहीं जाते और गुजरात के मंदिरों में क्यों जा रहे हैं। एक और खबर जो ध्यान खींच रही है, राजस्थान पत्रिका में भी है, अमर उजाला में भी है, कई और जगह है, डॉक्टरों और जो जांच केंद्र होते हैं जैसे ब्लड टेस्ट होता है या पैथ लैब्स में, उनके बीच कमीशनखोरी का पर्दाफाश बेंगलुरु की जांच एजेंसी ने किया है और आयकर विभाग का अनुमान लगाया है कि करोड़ों का खेल ये होता है। कई बार हम लोग जाते हैं तो लगता है कि जो जाँच हो रही उसके पैसे बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। अब अखबार बता रहे हैं कि पैसा कहाँ जाता है। इसके अलावा एक और खबर है, कई अखबारों में है, मेट्रो में बदसलूकी, अगर ये दिल्ली मेट्रो से जुड़ी खबर है, जो यात्री बदसलूकी करेंगे उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। पहले ये जुर्माना इतना नहीं था। कल बारा बफात यानी ईद उल मिलादुल नबी का त्यौहार था। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुसलमान इस त्यौहार को मनाते हैं। आज अखबारों में कई जगह से मध्य प्रदेश, राजस्थान से हिंसक झड़पों की खबरें हैं। और अब जिक्र दैनिक भास्कर की एक विशेष खबर का, जो बता रही है कि देश में वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला जब निकलता है तो यातायात को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन अखबार बता रहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है।
अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा। ये भारत की बात हुई और अब हाल लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अखबारों में इस हफ्ते कौन सा मुद्दा छाया रहा, सुनिए इकबाल अहमद का भेजा उर्दू प्रेस रिव्यू अमरेश द्विवेदी की आवाज में।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबार में इस हफ्ते धार्मिक गुट तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के धरना प्रदर्शन को बलपूर्वक खत्म करने के बाद पैदा हुए हालात से जुड़ी खबरें सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं। पाकिस्तान के एक धार्मिक गुट TAL के लगभग 3,000 कार्यकर्ता राजधानी इस्लामाबाद के फैजाबाद इंटरचेंज पर 6 नवम्बर से धरने पर बैठे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चुनाव सुधार के नाम पर संसद में जो संशोधन बिल पेश किया गया था वो इस्लाम की बुनियादी मान्यताओं का उल्लंघन करता है। पाकिस्तानी कानून के अनुसार चुनाव में भाग लेने वाले किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को ये हलफनामा देना होता है कि पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं और अब उनके बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संशोधन के लिए पेश किए गए बिल में इस हलफनामे की शर्तों के साथ छेड़छाड़ की गई थी जिसे वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन खत्म कराने के प्रयास नाकाम होने के बाद आखिरकार सरकार ने पिछले शनिवार यानी 25 नवंबर को बल प्रयोग किया था जिसमें कई लोग मारे गए थे। आखिरकार सेना की मदद से प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच 27 नवंबर को समझौता हुआ और धरने को पूरी तरह से समाप्त घोषित कर दिया गया, लेकिन सेना की भूमिका को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुछ लोग सेना के हस्तक्षेप का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ लोग सेना की मध्यस्थता की आलोचना कर रहे हैं। अखबार जंग के अनुसार जस्टिस अजमत सईद ने तंज करते हुए कहा, गैर कानूनी इमारतों को हटाने के लिए भी अब सरकार क्या किसी से समझौता करेगी? आखिर में आप कहेंगे कि यहां पर भी सेना बुला दें। उम्मीद है मेरी अनकही बात समझ गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फायज ईसा के हवाले से अखबार एक्सप्रेस लिखता है, सियासत के अलावा मुल्क के लिए भी सोच लिया करें, मुफ्त में मिली आजादी को तबाह ना करें, आजादी की कद्र रोहिंग्या मुसलमानों से पूछें।
उर्दू प्रेस रिव्यू अमरेश द्विवेदी से सुन रहे थे आप। हाल ही में ईरान में हुई एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी टीम की एक खिलाड़ी हैं पटना के मोकामा की शमा परवीन। शमा परवीन का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक का सफर आसान नहीं रहा। एक महिला होते हुए कबड्डी खेलने पर उन पर समाज ने ताने कसे, लेकिन हर कदम पर उनके पिता ने उनका साथ दिया। हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने शमा परवीन से बात की और जाना कि उनकी इस उपलब्धियों में क्या क्या बाधाएं आईं।
तो बहुत कठिनाई भरा दिन रहा। जब शुरुआती दौर में यहाँ जो मेरे परिवार के लोग हुए, एक अलग रूप से देखने लगे मेरे पापा को, एक अलग नजरिया से देखने लगे। मतलब यहाँ के गांव में जितने लोग थे, मुस्लिम परिवार के यहाँ जितने लोग थे, मतलब जिस गांव में हम रहते हैं वो मुस्लिम जगह है, मुअज्जम चक हुआ मेरे गांव का नाम, उस गांव में जितने लोग हैं मुस्लिम ही हैं। तो यहाँ के लोग का मेंटलिटी जो था, मेरे पापा को एक कटाव, मतलब एक मतलब छाट के रूप में देखने लगे, मतलब छाटने लगे कि ये गांव से छाटा हुआ इंसान है। यहाँ पे मेरी दादी हो गई, मेरी दादी बोलती थी तुम खानदान का नाम जो है डुबो रही है, तुम जो कर रही है हाफ पैंट पहनना, ये जीन्स पहनना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हमेशा मेरे अंकल हो गए अपने घर में आना मुझे मना करने लगे, मतलब बोले कि तुम मेरे घर नहीं आना।
इस भावना से निकाला कैसे आपके पिता ने, और आपको भी कभी कभी क्या ऐसा लगा क्या मुझको ये सब छोड़ देना चाहिए?
हाँ, हमें लगता था ऐसा, लेकिन बस यही मेरे पिता जो थे, मेरे सास थे, बोलते तुमको खेलना है बेटा। उनको तो हमसे ज्यादा तो उनको कठिनाई हुई ये सब चीज सुन करके। मतलब मेरे पापा शुरू से सोच किस तरह से चेंज हुआ है मुझे खिलाने का या समाज में लड़कियों का निकालने का, तो उन्होंने निकाला जब मुझे, तो वो बहुत क्या बोले, गांव के लोगों का बहुत ताना वाना सुनना पड़ा उनको, बहुत कठिनाइयां हुई उनको।
इतनी बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में भारत के लिए आपने सोना जीता है, खुद को लेकर क्या एक नजरिया बदला देखा है समाज का, और क्या आप देख रहे हैं कि क्या लड़कियां आपसे प्रेरित हो रही हैं?
इसके लिए तो ये आंखों देखो विश्वास नहीं होता है कि जब आए मेरा इतना अच्छा से वेलकम हुआ, वही अंकल जिन्होंने मुझे मना किया था कि अपने घर नहीं आना, अब वो मतलब मुझे माला पहनाए, मुझे इतना अच्छा से सम्मानित किया, मतलब यहाँ के लोग क्या बोले, मतलब एक अलग ही नजरिया हुआ हो गया।
शमा, आप आगे भविष्य अपना क्या देखती हैं, और लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
आगे के लिए भी गेम, मैं अपना बेहतर गेम करूंगी। लड़कियों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जब भी अपने घर से निकलती हैं तो एक विश्वास मन में रखे कि हाँ लोग समाज क्या कह रहे हैं, अगर लोग समाज के हम सोच से समझ से, अगर हम जिस तरह का उसका सोच है उस सोच से अगर हम सुन करके उस बात को उसके लिए हम बैक हो जाते हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। उसमें सोचना पड़ेगा क्या हम सही बात क्या है और गलत क्या है, उसको छांटना पड़ेगा।
ये थी पटना के मोकामा की रहने वाली कबड्डी चैंपियन शमा परवीन। अब वक्त है हमारी साप्ताहिक पेशकश बीबीसी न्यूज मेकर्स का। आज आपको सुनवाते हैं हाल ही में मिस वर्ल्ड 2017 का मकबूल ताज अपने नाम करने वाली हरियाणा की मानुषी छिल्लर को।
बीबीसी न्यूज मेकर्स में एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे। तो मेरी तरफ से है नमस्कार, और इनकी जीत में है सपने हजार, जिनका नाम है मानुषी छिल्लर, जो ब्यूटी विद ब्रेन है और बन गई है वो मिस वर्ल्ड 2017। तो जब मानुषी से पूछा गया कि भाई अब उनके ऊपर बहुत है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या किसी तरह का कोई प्रेशर महसूस करती हैं आप?
मुझे नहीं लगता कि डेफिनेटली विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई फील दैट व्हेन यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू डोंट फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर हेड, एंड आई लव डूइंग दिस, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रेशर, आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग इट।
बहुत सारे सवालों में एक सवाल आया मानुषी के पास कि भाई जब आप मिस वर्ल्ड बन गई तो सबसे पहले आपने किसको लगाया फोन?
सबसे पहला कॉल भारत में जो हमारी मिस इंडिया टीम है, मेरा उनसे पहले सबसे पहली बात हुई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है।
मानुषी ने खिताब जीतने से पहले जो जवाब दिया उसकी तारीफ हर जगह हो रही है, लेकिन मानुषी यही मानती हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उनका दिया साथ।
Because they've really believed in me through the very first day when I walked into the auditions. I think they've really encouraged me and they've made me believe in my own dreams. So I think I was very grateful to them for that.
बॉलीवुड में आप किस हीरो को अपने साथ फिल्म में लेना चाहेंगी? जब उनकी बारी आई तो उनका कहना था
डेफिनेटली मैं आमिर खान की मूवी में वर्क करना चाहूंगी, बिकॉज आई थिंक ही हैज रियली चैलेंजिंग रोल्स दैट ही गिव्स टू, एंड एट द सेम टाइम उनके जो मूवीज होती है दे हैव अ मैसेज एंड अ कनेक्ट टू द सोसाइटी।
लेकिन अगर हम एक्ट्रेसेस की बात करें तो कौन है आपका फेवरेट?
मुझे लगता है कि सारे ही एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो मैं एक को चूज नहीं कर पाऊंगी। माई पर्सनल फेवरेट इज प्रियंका चोपड़ा।
तो मानुषी, बाकी लड़कियों के लिए आपके पास क्या टिप्स है?
मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हमेशा नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, जस्ट डोंट गिव अप, यू नो, एंड व्हेन यू हैव द करेज टू एक्चुअली परस्यू योर ड्रीम्स, ऑल गुड थिंग्स विल कम टू यू।
गुड थिंग्स से हमें एक बात याद आई, क्या आप जानते हैं कि मानुषी के सर पे जो मुकुट है उसकी कीमत कितनी होगी? इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक अगर हम माने तो उस मुकुट की कीमत है $750,000, यानी कि भारतीय करेंसी में इसकी कीमत हो जाती है $4,83,00,000 रुपए। भारत लौटने के बाद उनका हुआ भव्य स्वागत, जहां पे उनके सामने रही कई सारे सवालों की बौछार। उन्हीं में एक सवाल ये भी था कि अब व्हाट नेक्स्ट, क्या वो अपना MBBS की पढ़ाई पूरी करना चाहेंगी?
दिस वन ईयर आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माय ईयर दैट आई विल बी ट्रैवलिंग एंड वी विल बी विजिटिंग 4 continents।
कि भाई कौन मेन है, मानुषी के अंदर जो डॉक्टर है, या फिर मानुषी का जो मिशन है, या फिर ये मिस वर्ल्ड का जो खिताब उनको मिला है?
Well, वो तीनों मानुषी एक ही है वैसे, क्योंकि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ या फिर मैं मिस वर्ल्ड हूँ या फिर मैं अपना ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट में के तरफ काम कर रही हूँ, तो तीनों का मोटिव एक ही है, टू बी एबल टू मेक अदर्स लाइव्स मोर कंफर्टेबल। सो तीनों मानुषी एक ही है और आप आगे भी मुझे इसी अवतार में देखेंगे।
लेकिन करियर के सवाल पे मानुषी का क्या था जवाब?
डॉक्टर ऑफकोर्स।
वेल, सोशल मीडिया पे भी काफी सारी बातें सोशल हुई, जिनमें से कुछ बातें थोड़ी सी नागवार गुजरी मानुषी छिल्लर को, जिनके बारे में उनका यही कहना है,
100 में से अगर 2 लोग मुझे कुछ गलत भी बोलते हैं तो मुझे 98 लोगों ने अच्छा बोला, तो आई थिंक आई विल फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ इट।
और जब मानुषी से ये पूछा गया कि क्या वो फिल्में देखती हैं बहुत ज्यादा, तब उनका जवाब था,
मैं किताबें ज्यादा पढ़ती हूँ वैसे।
मानुषी छिल्लर को हमारी तरफ से लख लख बधाइयां, साथ में बहुत सारी शुभकामनाएं उनके फ्यूचर के लिए।
मानुषी छिल्लर को सुन रहे थे आप। अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। भारत और श्रीलंका के बीच कल से दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू हुआ, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और कल जब पहले दिन का खेल समाप्त हुआ, तब भारत ने कप्तान विराट कोहली और मुरली विजय के शतक की मदद से 4 विकेट खोकर 371 रनों का विशाल स्कोर बना लिया था। स्टंप के समय कप्तान विराट कोहली 16 चौकों की मदद से 156 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि मुरली विजय ने भी 155 रनों की शतकीय पारी खेली। मुरली विजय लक्षण संधाकन का शिकार बने। ये मुरली विजय का 11वां टेस्ट शतक रहा। शिखर धवन और चेतेश्वर पुजारा 23-23 रन बना सके, तो अजिंक्य रहाणे केवल 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन कल का दिन रहा मुरली विजय और विराट कोहली के नाम। इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 283 रनों की साझेदारी की। कप्तान विराट कोहली के बल्ले से उनका 20वां टेस्ट शतक निकला। वैसे अपनी शतकीय पारी के दौरान विराट कोहली अपने टेस्ट करियर के 5000 रन पूरे करने में भी कामयाब रहे।
श्रोताओं, अभी समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट में आपने सुना कि बसपा ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की है। इस पर फेसबुक पर हमें लाइव सुन रहे श्रोता रत्ना राम ने लिखा है कि बैलेट पेपर से चुनावों की मांग अप्रासंगिक है, मन बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखते रहिए। अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए दिलनवाज पाशा से।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि उन्होंने माइकल फ्लिन को FBI से झूठ बोलने की वजह से बर्खास्त किया था। ट्रंप के इस ट्वीट के बाद उन पर न्याय को बाधित करने के आरोप भी लग सकते हैं। वहीं अमेरिका के प्रमुख मीडिया नेटवर्क ABC ने फ्लिन प्रकरण की गलत रिपोर्टिंग करने पर अपने मुख्य खोजी पत्रकार ब्रायन रॉस को 1 महीने के लिए बर्खास्त कर दिया है। गलत रिपोर्ट की वजह से कुछ समय के लिए अमेरिकी डॉलर और स्टॉक बाजार गिर गए थे। जर्मनी की प्रवासी विरोधी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AFD ने कट्टरपंथी विचारधारा वाले 2 नेताओं को पार्टी के संयुक्त शीर्ष नेताओं के तौर पर चुन लिया है। यमन की राजधानी सना में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और उनके पूर्व सहयोगी सैन्यबलों के बीच 4 दिनों से लड़ाई जारी है। लेसेथो में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय सैन्यबल तैनात किए गए हैं। साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी ने लेसेथो के शीर्ष सैन्य कमांडर की सितंबर में हुई हत्या के बाद सैन्यबल भेजने को अनुमति दे दी है। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो का जिम्मा था दीपक जसरोटिया के पास और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचा रही थी मीना कोटवाल। तो अब कुलदीप मिश्र को सभी सहयोगियों के साथ दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।